संता विलास ग्रंथ में एक चैप्टर है ईश्वर भक्ति की प्राप्ति, उसका वचन नंबर 64 है। यह अक्सर पढ़ रहा हूं, फिर इस पर विचार होगा। जब तक देह के मद में गिरफ्तार है, जब तक देह के मद में गिरफ्तार है, तब तक बड़े यत्न करके सत विचार और सत अभ्यास को धारण करना चाहिए। सत विचार यह ही है कि देह को नाश स्वरूप देखना, और सत अभ्यास यह ही है कि देह की जीवन शक्ति यानी आत्मा में दृढ़ निश्चय रखकर सिमरण ध्यान करना। बगैर अपने अंतर सिमरण ध्यान के बुद्धि कभी भी निश्चल नहीं होती। इस वास्ते सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपने अंतर विखे जानकर निर्मल प्रेम द्वारा सिमरण करना ही असली भक्ति और शांति है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जब तक देह के मद में गिरफ्तार है, तब तक बड़े यत्न करके सत विचार और सत अभ्यास को धारण करना चाहिए। मैं देह के मद में गिरफ्तार हूं, मद कहते हैं नशा। मेरी बुद्धि में या मुझ में एक नशा सवार है। क्या नशा है वो? कि मैं शरीर हूं। तो मैं यानी जीव जो जीवन जी रहा है, जिसमें होश है, मुझको पता है मैं जानता हूं, तो जो जानने वाली शक्ति है उसी का नाम जीव है, वही मैं हूं। लेकिन इस जड़ देह के प्रति मेरे अंदर यह भाव बना हुआ है कि मैं देह ही हूं, और इस भाव से शायद दिन में एक मिनट के लिए भी मैं कभी मुक्त नहीं हो रहा। तो हर दिन मेरा जो व्यतीत हो रहा है, मैं क्या कमाई कर रहा हूं, इस नशे को और गहरा कर रहा हूं। संसारी कार्य कर करके मैं इस नशे को और गहरा कर रहा हूं कि मैं देह हूं। इसीलिए यदि हम शास की बात पर सही सही विचार ना करें, केवल उसको पढ़ लें, तब वो हमारा क्या कल्याण करेगा। वचन चाहे एक ही पढ़ें, लेकिन वो आपको क्या सिखाना चाह रहा है। हर शब्द का, हर वर्ड का जो वहां जो प्रयोग किया गया है, वो उसका क्या मतलब है, वो क्या आपको सिखाना चाह रहा है। जब तक मेरी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंचती, मैंने उसको क्या पढ़ा और क्या सीखा। इसलिए पढ़ाई लिखाई तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन समझता कोई कोई है। इसलिए इस सत्संग के माध्यम से आज हमको ये चीज सिखाई जा रही है कि ये वचन कह क्या रहा है हमसे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब तक देह के मद में गिरफ्तार है, तब तक बड़े यत्न करके सत विचार और सत अभ्यास को धारण करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने यही सीखना है कि मैं देह के मद में गिरफ्तार हूं, देह के नशे में मैं गिरफ्तार हूं, देह का नशा मेरे ऊपर सवार है। जिस प्रकार मनुष्य के ऊपर अल्कोहल का नशा सवार होता है, शराब का नशा सवार होता है, तो आप सब जानते हैं वो जिंदगी को बर्बाद करता है। क्योंकि जब तक बुद्धि होश में है, जिंदगी का आप सही उपयोग करोगे। जब बुद्धि नशे में है, तब जिंदगी का आप दुरुपयोग करोगे। ये सब जानते हैं, इसमें कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। और शराब के नशे में लोग क्या क्या कांड करते हैं आप सबको पता है। तो मेरे ऊपर भी एक गहरा नशा सवार है, जिसने पूरी जिंदगी मेरी बर्बाद कर रखी, लेकिन मैं शराब को तो नशा समझता हूं, मैं देह हूं इसको मैं नशा नहीं समझता। और सतपुरुष इसी बात की याद दिला रहा है, तू गहरे नशे में जी रहा है, जो तू है नहीं वो तू अपने आप को समझ रहा है। इसलिए जब तक तेरे ऊपर ये नशा सवार है कि मैं देह हूं, तब तक तुझे दो काम करने को गुरु कह रहा है। वो कह रहे हैं क्या, तब तक बड़े यत्न करके सत विचार और सत अभ्यास को धारण करना चाहिए। अब हम सबको पता है कि मेरे अंदर ये नशा कितना गहरा है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक शायद एक बार भी हमको याद ना आती हो, किसी किसी को याद आती भी होगी, जो थोड़ा होश में होगा थोड़ी याद आती होगी, मैं समझ के आ रहा हूं क्या मैं। लेकिन ज्यादातर हम लोगों में से ये याद ही नहीं आती होगी कि मैं हूं क्या और अपने आप को समझ के आ रहा हूं। तो जब तक ये नशा मेरे ऊपर सवार है, ये दो कार्य करने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं, क्या कि सत विचार और सत अभ्यास को बड़ा यत्न करके धारण करना चाहिए, बड़ी कोशिश करके। और मेरी कोशिश क्या होती है, संसार की दौलत इकट्ठी कर लूं और दौलत के द्वारा संसार के सुख भोग लूं, ये मेरी कोशिश होती है जो आपके नशे को और गहरा करते हैं। ये जो आपकी एक्टिविटी है सुबह से लेकर रात तक की, जिसके लिए जीवन आप खर्च कर देते हैं पूरा पूरा, इतना कीमती जन, ये आपके इस नशे को गहरा करते हैं। इसका मतलब आप अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी का सर्वनाश कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपके घर में कोई शराबी पैदा हो जाए और उसका नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, तो आप क्या कहोगे, इसकी मौत नजदीक आ रही है, इसने तो जिंदगी पूरी ही बर्बाद कर दी। और जब ये नशा और गहरा हो जाता है, शराब की आदत और गहरी हो जाती है, तब आप यही समझते हैं अब इसकी आदत नहीं छूटेगी, ये तो गया। तो इसी प्रकार गुरु भी देखता है, जब मैं माया में फंसता हूं, माया में ही सारा टाइम खर्च कर देता हूं और बहाने बनाता हूं, क्या करूं, इतने काम है संसार में, इतनी जिम्मेवारियां हैं कि कहां पढ़ने की फुर्सत है, कहां सिमरन की फुर्सत है। तो ये मेरे गहरे नशे की हालत है, ये मेरी बर्बादी की अंतिम अवस्था है, जहां मुझको गुरु भी होश में लाने में समर्थ नहीं है, वो भी नहीं ला सकता। इसलिए बात भले ही पढ़ने में साधारण लगे, लेकिन विचार करने में वो बड़ी गहरी होती है। तो इसलिए गुरु क्या कह रहा है, इस पे ध्यान दें। अब वो परिभाषा कर रहे हैं कि सत विचार और सत अभ्यास क्या होता है। वो लिख रहे हैं, सत विचार यह ही है कि देह को नाश स्वरूप देखना। सत विचार यह ही है कि देह को नाश स्वरूप देखना, अर्थात देह हर मिनट हर पल नाश की ओर जा रही है, नष्ट हो रही है, और ये पूरी तरह से मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ये सत विचार क्यों है, क्योंकि यही विचार आपको सबसे जोड़ता है। मैं जानता हूं एक बात को, अच्छी तरह से जानता हूं, हम में से ऐसा कोई भी यहां नहीं है जो इस बात को ना जानता। मैं जानता हूं ये देह तभी तक कार्य कर रही है जब तक इस देह के अंदर जीवन शक्ति मौजूद है, जिसको हम जान कहते हैं और जिसको महाराज जी ईश्वर कहते हैं। मैं तो कंफ्यूज रहता हूं, ये तो मैं कह दूंगा कि हाँ मेरे जिसमें जान है, जब तक जान है तब तक ये देह कार्य कर रही है, लेकिन मुझे ये याद नहीं आती इस जान का नाम ईश्वर है, ये मुझको याद नहीं आता, ये मैं कभी नहीं सोचता। और महाराज जी इस ईश्वर के बारे में एक और बात कह रहे हैं, प्रेमी जिस प्रकार गन्ने के अंदर चीनी मौजूद है, गन्ने के अंदर चीनी मौजूद है, लेकिन यदि ठीक विधि अपनाई जाए तो उस चीनी को गन्ने से अलग करके जाना जा सकता है, उस चीनी का स्वाद चखा जा सकता है। तो उसी प्रकार इस देह के अंदर वो जीवन सत्ता जिसका नाम ईश्वर है वो मौजूद है, उसके कारण ही ये देह कार्य करने में समर्थ है, अन्यथा इसको हम जला देते हैं। लेकिन मेरा उस जीवन शक्ति से जिसको शास्त्र ईश्वर कहते हैं, मेरा उस जीवन शक्ति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। मेरा संबंध किससे है? इस जड़ वस्तु से है, जिसके कारण पूरा जन्म मैं कंफ्यूज्ड होकर, अज्ञानी होकर इस गहरे नशे में बिता देता हूं कि मैं देह। तो अब सार इस शरीर का क्या है? वो जीवन शक्ति सार है शरीर का, वही कीमती वस्तु है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो कभी नहीं बदलती, वो वैसी की वैसी रहती है। चाहे मेरी देह 1 साल की थी, चाहे देह मेरी 50 साल की है, लेकिन जीवन शक्ति वैसी की वैसी। देह तो बदल चुकी, कितनी बार बदल गई। जब आप 1 साल के थे, आप अपनी देह को पहचान सकते हो फोटो देखकर कि मैं यही हूं? एक भी चीज आपकी नहीं मिलती, देह तो बदल गया। लेकिन जो लगातार कायम है और वही है, वो जीवन शक्ति है। तो देह, तेरी देह के अंदर जो ईश्वर मौजूद है जिसका नाम जीवन शक्ति है, और जो तेरी देह का संचालन कर रहा है, उसको तू भूले बैठा हुआ है। तुझको होश ही नहीं है, वही एक स्थाई चीज है, और केवल स्थाई नहीं है। उसको शास्त्र आनंद का सागर कहते हैं, उसको शास्त्र ज्ञान का सागर कहते हैं। जिसने उस अंदर उस ज्ञान शक्ति को, उस जीवन शक्ति को जाना, जिसने उसके लिए अभ्यास किया, कोशिश की, उसको उसके अंदर इतना आनंद प्राप्त हुआ कि इतनी प्रिय देह को वो भूल ही गया। महाराज जी की जब समाधि की अवस्था होती थी, प्रेमी जब घेरा बना के बाहर चारों तरफ बैठे होते थे कि महाराज जी समाधि से जागेंगे तो हम उनसे प्रश्न पूछेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। लेकिन महाराज जी जब समाधि से बाहर आते थे तो उनकी आंखें लाल होती थी और आंखों में ऐसा नशा नजर आता था प्रेमियों को कि जैसे कोई बहुत ही प्रिय चीज छोड़कर ही आ रहे हो। उस प्रिय चीज का नाम शास्त्र में आनंद है, उस प्रिय चीज का नाम शांति है, जिसको हम इंग्लिश में ब्लिस कहते हैं। वो आनंद का सागर है जिसको हम ईश्वर कहते हैं। उस आनंद के सागर को मैं छोड़े बैठूंगा और इस मौत के सागर को मैं पकड़े बैठूंगा और फिर कहता हूं कि संसार में बड़े इंपॉर्टेंट कार्य मैं कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं। बच्चों को भी वही आदर्श मैं सिखाता हूं, अरे मूर्ख तू जिंदगी बर्बाद कर रहा है, वही बर्बादी का पाठ तू बचपन बच्चों को भी पढ़ा रहा है, तुझे होश ही कोई नहीं है। तो गुरु इसीलिए धारण किया जाता है कि मैं होश में आ जाऊं, और होश यही है कि मैं देह नहीं हूं, जिसका नाम ईश्वर है, जिसका नाम जीवन शक्ति है, जिसमें आनंद है, जो ज्ञान का सागर है, जो शांति का सागर है, वो मेरा निज रूप है, मैं वही हूं। गुरु तो ये आपको सिखाने आया है, तू देह नहीं है, वो कहते हैं तू आत्मा है, तू खुद ईश्वर है, तू खुद वो जीवन सत्ता है, जीवन शक्ति। इसीलिए गुरु एक ही काम के लिए हमको याद दिलाता है कि तू इस नाशवान देह को नाशवान ही समझ। इसलिए माजी कह रहे हैं कि सद्विचार यह ही है कि देह को नाश स्वरूप समझना, यही सद्विचार है। जितना भी सत्विचार करते हो या यूं कहिए कि शास्त्रों के वचनों पर विचार करते हो, उसका उद्देश्य तो केवल एक ही है कि इस देह को नाशवान समझना और इस देह को चलाने वाली जो जीवन शक्ति है, जो जान है, जिसको ईश्वर कहते हैं, उस ईश्वर को अपनी मंजिल समझना। तो इसीलिए अभी जो सुन रहे थे, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का, ये सार है। जिस प्रकार आप सुन रहे थे कि मौसमी में रस है, हम मौसमी क्यों खरीदते हैं, ताकि उस रस को हम ग्रहण कर लें। तो मानव देह हम क्यों धारण करते हैं, ताकि इस देह के अंदर जो सार है, जो रस है, जिसका नाम जीवन शक्ति है, उसको मैं ग्रहण कर लूं, उसका स्वाद मैं चख लूं। उसके लिए ये मानव देह मैं धारण करता हूं और अटर कंफ्यूजन में, गहरी अज्ञानता में, इस देह रूपी जीवन का मैं अपने ही हाथों से सत्यानाश कर देता हूं। अर्थात पूरी आयु निरर्थक ही पैसा कमाने में और सुख भोगने में खर्च कर देता हूं, ये जिंदगी की बर्बादी है। इसलिए साधारण व्यक्ति से भी कहो, भाई जिंदगी की बर्बादी जितनी कम से कम करो, उतने ही बुद्धिमान हो। इसका मतलब हुआ कि जीने की कला यह है कि जितना कम से कम मैं पैसा कमाने की कोशिश करूं। क्यों कम से कम कमाने की कोशिश करूं? क्योंकि ताकि भोग विलास भी मैं कम से कम करूं। यदि ऐसा करूंगा तो मेरी बुद्धि का होश बना रहेगा, क्योंकि तेरे पास टाइम होगा, उस टाइम को तो बर्बाद नहीं करेगा, उस टाइम का वो उपयोग करेगा जिस उपयोग को करने के लिए तुझको मानव देह ईश्वर ने प्रदान की है। और वो उपयोग एक ही है कि मैं अधिक से अधिक सत विचार करूं और अधिक से अधिक सत अभ्यास करूं। इन दो कामों के लिए मैंने जीवन का किया जो समय है, समय रूपी धन है, मैंने उसके लिए खर्च करना था। मैं धन जो है काय में खर्च कर रहा हूं, संसार के भोग इकट्ठे करने में, भोगों को भोगने में मैं धन का उपयोग कर रहा हूं। तो ये जिंदगी की बर्बादी है। तो अब बताइए, जो समय का ज्यादा उपयोग इस काम के लिए कर रहा है, वो मूर्ख है या बुद्धिमान है? आप खुद निर्णय करके देखो, वो मूर्ख है या बुद्धिमान है, सत्पुरुष के इस वचन के आधार पर आप खुद निर्णय करके देखो। तो इसलिए गुरुदेव साफ कह रहे हैं कि सत विचार यही है कि देह को नाश स्वरूप देखना, और सत अभ्यास यह ही है कि देह की जीवन शक्ति यानी आत्मा में दृढ़ निश्चय रखकर सिमरण ध्यान करना, उसमें दृढ़ निश्चय रखकर कि वही जीवन है, वही ईश्वर है, वही मुझको सारे कष्टों से मुक्त करे। जो अंतर्यामी ईश्वर है, इस जीव के सारे कष्टों को केवल वो अंतर्यामी ईश्वर ही दूर करेगा, उनसे मुक्त करेगा। इसीलिए जो ये दृढ़ निश्चय कर अंतर्यामी ईश्वर की याद को लक्ष्य बनाकर उसके लिए जीवन जीता है, वो बुद्धिमान मनुष्य है। आगे कह रहे हैं, बगैर अपने अंतर सिमरण ध्यान के बुद्धि कभी भी निश्चल नहीं होती। इसका मतलब बुद्धि के अंदर यह संशय सदैव बना ही रहता है, क्या कि मैं देह हूं, मैं जीवन शक्ति हूं, या यूं कह लिए कि मैं जीव हूं जिसने ईश्वर शक्ति के साथ संबंध स्थापित करना है। और इस काम के लिए वो ये मानव जीवन व्यतीत करता है। तो ये निश्चय बुद्धि में आपके अंदर नहीं बना रह सकता जब तक आपके अंदर इस प्रकार का निश्चय नहीं है, जिस प्रकार का निश्चय ये वचन आपको धारण करने को कह रहा है। इस वास्ते सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपने अंतर्विखय जानकर, इस वास्ते सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपने अंतर्विखय जानकर निर्बल प्रेम द्वारा सिमरण करना ही असली भक्ति और शांति। तो ईश्वर सिमरण के लिए कैसा निश्चय चाहिए? अब हम विचार करके देखें कि हम जो कंप्लेंट करते हैं कि मैं सिमरन करता हूं लेकिन मेरा मन नहीं लगता, जरा अपनी बुद्धि के निश्चय को तो देखो, तुम्हारा निश्चय कहां खड़ा हुआ है? एक दिन सिमरन आपका ना हो, नहीं हो, नहीं हो पाया तो विचार करके देखो कि आपको क्या उतना अफसोस होता है जितना एक दिन की कमाई आपकी नहीं हो पाई, या कोई नुकसान हो गया, आर्थिक नुकसान हो गया, उसका जो गहरा अफसोस आपके अंदर होता है, उसकी चिंता फिक्र आपके मन में जो पैदा हो जाती है, क्या वैसी चिंता फिक्र सिमरन छूटने से होती है? नहीं होती, क्योंकि बुद्धि के अंदर निश्चय एक ही बैठा हुआ है कि जिंदगी की सफलता पैसा कमाने में और भोग इकट्ठे करने में, ये हमारी बुद्धि का प्रधान निश्चय है। और ईश्वर है इस देह के अंदर, ये हमारा सेकेंडरी निश्चय है, ये मंद निश्चय है, ये परिपक्व निश्चय नहीं है हमारे लिए, इसीलिए हमारा सिमरन में मन नहीं लगता, ईश्वर के प्रति वो विश्वास ही नहीं। फैक्ट मेरे बारे में ये, भले ही मुझको 20 साल हो गए हों सत्संग सुनते सुनते, लेकिन मैं यदि अंतःकरण को टटोल के देखूं तो निर्णय आपको यही निकलेगा कि मेरे अंदर ईश्वर के प्रति इस प्रकार का निश्चय नहीं है। मैं देह मद के साथ ही संसार में विचरण कर रहा हूं, इसलिए जरा जरा सी बातों के लिए आप अपनी तारीफ करवाना चाहते हो और कोई आपकी तारीफ कर दे तो बड़े खुश होते हो, ये स्वाभाविक बात है। क्यों? क्योंकि हम देह मद के साथ जी रहे हैं, और जरा कोई अपमान करे तो कैसे तिलमिला जाते हो, इतना सा अपमान भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता। ये आपकी जो प्रक्रिया है, ये आपकी जो आपका जो रिएक्शन है, ये सिद्ध करता है कि आपके अंदर ये फेथ हर समय बना रहता है कि मैं देह हूं, ये हर वक्त आपके अंदर बना रहता है, जबकि आपके अंदर ये बना रहना चाहिए कि मैं जीव हूं जिसको ये देह मिली है, और इस देह के अंदर ईश्वर खुद मौजूद है, तो किस कमाई करने के लिए ये मानव देह मुझको दिया है ईश्वर ने, कि अंतर्यामी ईश्वर के साथ मेरी भेंट हो सके। इसीलिए प्रेम से, दृढ़ निश्चय से मैं प्रभु की याद में संलग्न रहता हूं, प्रभु की याद में लगा रहता हूं, जिसका नाम है अभ्यास या सिमरन। तो जब तक मेरे अंदर इस प्रकार का विवेक हर वक्त कायम नहीं रहता, तब तक मेरे अंदर होश कहां बना रहेगा? जरा विचार करके तो देखो, जरा से दो तारीफ मेरी कोई कर देगा, मैं भूल जाऊंगा अपने रूप को, फिर देह में आ जाऊंगा, वहां मेरी तारीफ हो रही है। अरे किसकी तारीफ हो रही है? जरा विचार करके तो देख, जो तारीफ कर रहा है वो तेरी देह को ही तो देख रहा है, और देह की ही तारीफ कर रहा, वास्तव में तुझको तो कोई जानता ही नहीं। यदि तुझको कोई जानने वाला है तो केवल गुरु है, या जिसको हम कह सकते हैं कि अंतर्यामी ईश्वर। गुरु खुद भी कह रहा है कि सतगुरु तो अंतर, वो खुद कह रहा है कि मैं तेरे अंदर, इसका मतलब गुरु ईश्वर। तो मेरे बारे में कोई यदि जानकारी रखता है, कोई जानता है मुझको, तो केवल ईश्वर जानता है। इसीलिए वो ईश्वर मेरे जीवन को बचाने के लिए मेरा मार्गदर्शन भी करता है। अब संसार के लोग मार्गदर्शन नहीं करते आपका, आपका गुरु मार्गदर्शन करता है। क्यों गुरु मार्गदर्शन करता है? संसार के लोग मार्गदर्शन कैसे करेंगे आपका? इस वचन को पढ़ेंगे, इसको सीखेंगे, फिर आपको सिखाएंगे। तो मार्गदर्शन आ कहां है चला है आपके पास? गुरु से ही आ रहा है, ईश्वर से ही मार्गदर्शन आ रहा है। बिना उसकी कृपा के आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते। तो इसीलिए प्रभु तो हम पे कृपा करने के लिए गुरु रूप में संसार में अवतरित हो जाते हैं, गुरु बनकर, ऋषि बनकर वो शास्त्रों की रचना भी कर जाते हैं, और महाराज जी ने एक और कृपा की, हमारे लिए संगत का भी निर्माण कर गए। किस वास्ते? ताकि संगत को देखकर आपको गुरु की याद आए। संगत के माध्यम से गुरु ज्ञान हम सीख सकें और उस गुरु ज्ञान के आधार पर मैं अंतर्यामी गुरु की, अंतर्यामी ईश्वर की उपासना कर सकूं। देह के नशे से मैं जागृत हो सकूं, ये नशा मेरा टूटे। तो गुरु ज्ञान जो है, इस गुरु ज्ञान का नाम ही विवेक। तो ये विवेक जब मेरे अंदर परिपक्व होता है तो ये विवेक क्या काम करता है, मेरे इस नशे को तोड़ देता है कि मैं देह हूं। आपको ये याद बनी रहती है कि मैं जीव हूं और देह उस अमृत रूपी ईश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए मिली है। वो मेरे साथ ही मौजूद रहे, वो ईश्वर मेरे साथ रह रहा है इस देह के अंदर। जिस प्रकार मैं इस देह में रह रहा हूं, उसी प्रकार मेरा ईश्वर भी इस देह के अंदर ही निवास कर रहा है। बस बात मैंने इतनी ही माननी है कि गुरु जो कह रहा है, जैसा वो समझाना चाह रहा है वैसा समझकर उस प्रभु की याद के लिए ये मानव आयु में खर्च करूं। और गुरु का जो शास्त्र है या ऋषियों की जो वाणी है उसको समझने की कोशिश करूं, ताकि पैसा कमाना और संसार के सुख भोगना, इस लक्ष्य को मैं छोड़ सकूं। देह की रक्षा तो ईश्वर आपकी और ये ईश्वर की प्रकृति आपकी देह की रक्षा तो कर रही है, और आपका जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध आपको कर्म करने के लिए भी मजबूर करेगा और पैसा कमाने के लिए भी मजबूर करेगा। कमाओगे आप, लेकिन आप होश में रहकर कमाओगे, काम चलाने के लिए कमाओगे, भोगों को इकट्ठा करने के लिए, भोगों को लक्ष्य बनाने के लिए नहीं कमाओगे। तो जब विवेक के साथ आप जियोगे तब आपको इस बात का ध्यान रहेगा कि देह नाशवान है, किसी पल भी यह पूर्ण नाश को प्राप्त हो सकती है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। इसीलिए जितनी भी आयु मुझको मिली है, पता नहीं मुझको, किसी को 40 मिली है, किसी को 80 मिली है, किसी को 60 मिली है, पता नहीं किसको क्या मिली है। तो जो कुछ भी आयु मुझको मिली है, जिसका मुझको पता नहीं, उसका बेस्ट यूज मैं कर लूं, ताकि ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो जाए। और उसकी प्रसन्नता का मतलब यह है कि अंतर्यामी उस ईश्वर का अनुभव मुझको प्राप्त हो जाए। और वो अनुभव जब इस विवेक के साथ, इस वैराग्य के साथ जब आप अंदर सिमरन करते हो, तब उस ईश्वर का अनुभव आपको प्राप्त होता है। तब आपको पता लगता है कि आनंद ईश्वर में है या जीवन का आनंद सांसारिक भोगों में है। उस दिन पता लगता है सांसारिक भोग पूर्ण बर्बादी का स्वरूप है और प्रभु की याद ये कल्याण का स्वरूप है। उस दिन आपको पता लगता है। तो फिर जब ईश्वर का आनंद आपके अंदर जागृत होता है, तब आप अपनी ही इच्छा करके, अपना ही अनुभव करके उस प्रभु की याद दिन रात करने की कोशिश करती हो। फिर किसी को कहना नहीं पड़ता कि तुम अभ्यास करो। इसीलिए इस वचन के सही अर्थ को समझकर इसके अनुसार हम चिंतन करने की कोशिश करें, इसके अनुसार हम जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें, ताकि मानव जीवन हमारा सफल हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम्।